जलाना ही ठीक है, थोड़े से जमीन में करोड़ों लोगों को जलाया जा सकता है, और नहीं इस तरह से जमीन छेकते छेकते तो मर करके पूरी दुनिया कवर कर लेंगे, तो खेती कहाँ होगी, कहाँ आदमी बसेगा, ये सोचने की बात है। तो जो कुछ भी हो, हमारा यहाँ यह विषय नहीं है, विषय यह है कि शरीर एक दिन बीट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा या कृमि हो जाएगा, एक दिन शरीर की दशा होगी, और इन तीन में से एक दशा तो होगी ही, जलाया जाएगा शरीर तो राख हो जाएगा, या कोई जीव खाएगा तो उसका मल हो जाएगा, या जमीन में जाएगा तो कृमि हो जाएगा। आज चाहे कुछ भी नाम रख लीजिए शरीर का, हम लोगों का सबका भिन्न भिन्न नाम है, हमको भी कोई कहता होगा सन्यासी जी हैं, महाराज जी हैं, लेकिन एक दिन भस्म महाराज तो होना ही है, एक दिन शरीर तो जाएगा, तीन गति में से एक गति प्राप्त होगी। तो इस नाशवान शरीर के लिए यदि हम जीवों को सताते हैं, दूसरों को काट करके खाते हैं, तो इसमें क्या स्वार्थ है जीव का, कुछ भी नहीं, निरयो जता, अंत में निरय प्राप्ति होती है, नरक जाना पड़ता है, शरीर भी गया और नरक में गए, शरीर छोड़ करके जाना है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो शरीर लेता है उसको शरीर छोड़ना है, और जो शरीर छोड़ता है उसको शरीर लेना है। जातस सही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च, एक ही श्लोक में दो बार ध्रुवम शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। जन्म जो लिया है उसको निश्चित शरीर छोड़ना है, और जो शरीर छोड़ा है उसको दूसरा शरीर लेना है, ये नियम है ध्रुवम, ये अटल सिद्धांत है। यदि हम इस शरीर में पाप करते हैं, मांस मदिरा आदि खाते पीते हैं, तो दूसरा शरीर बहुत दुखद मिलेगा, बहुत हीन शरीर मिलेगा इस पाप के कारण। तो नारद जी कहते हैं स्वार्थम किम, इसमें क्या स्वार्थ है यदि हम दूसरे जीव को खाते हैं सताते हैं, बल्कि वेद निरयो जता, उसमें निरय की प्राप्ति होती है। और देह को आदमी मेरा मानता है, ये मेरा देह है, वास्तव में देह में जो अहम भाव है और देह में जो ममता है वो भी फाल्स है, किसी का देह नहीं है। यह एक देह को कई लोग मेरा मेरा कहते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से मरने तक उसको, उसके शरीर को कई लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, कई लोगों का यहां लिस्ट गिनाया गया है। तो प्रथम कह रहे हैं देह किमन दातु स्वम, क्या यह शरीर अन्न दे करके पोसने वाले का है? जो व्यक्ति अन्न दिया है, भोजन दिया है जन्म से, तो कहेगा कि मैंने इस शरीर को पोसा है इसलिए शरीर मेरा है। तो इस पर मां कह सकती है कि नहीं, मैंने इसको अपने पेट में पाला है इसलिए मेरा है। तो क्या ये माता का शरीर है? ये है किसका? Who is proprietor of this body? यहां प्रश्न उठाया गया है। कुछ दिन जन्म लेता है बच्चा, तो मां कहती है मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, और वही बेटा जब किसी सरकारी नौकरी में हो जाता है तो उस डिपार्ट वाले कहते हैं मेरा स्टाफ है, ये मेरा आदमी है, ये पुलिस का आदमी है या इसका आदमी है, ये मेरा आदमी है। और जब उसका विवाह हो जाता है तो जिसके साथ विवाह होता है वो लड़की कहती है He is mine, ये मेरा है। ये मेरा मेरा की मुहर लगती जाती है और पहली मुहर मिटती जाती है। अब वो कहता भी है, वो कहती है ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, या पति कहता है कि ये मेरी है। और वो कहीं अगर सेना में भर्ती हो गया, बॉर्डर पर लड़ने चला गया, तो सरकार कहती है कि ये मेरा सिपाही है, मेरा है, और वो खरीद लेता है रियली उस शरीर को। 2-4 हजार वेतन दे करके महीने में, $2,000-4,000 यहाँ का स्टैंडर्ड होगा, महीना वेतन दे करके, और सरकार कहती है मेरा शरीर है, तुम बॉर्डर पर खड़ा रहो लड़ने के लिए। वो शरीर हमारे स्त्री का रहते हुए या माँ का रहते हुए भी उनका नहीं रह पाता है, ये शरीर बेच दिया जाता है। नौकरी करना अपने को बेचने के बराबर ही है, 8 घंटे के लिए हम दूसरे के गुलाम हो जाते हैं, हम उस शरीर का इस्तेमाल दूसरों के लिए करते हैं। तो वह व्यक्ति कहता है कि ये मेरा शरीर है, मैंने इसको इतना डॉलर देकर खरीदा है 8 घंटे के लिए। तो कहता है कि मेरा शरीर है, और मातुर पितुरवा नाना भी कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है क्योंकि मेरी बेटी के गर्भ से जन्म लिया है। नाना भी कहते हैं कि ये मेरा नाती है, नानी कहती है कि ये मेरा शरीर है, और कोई बलपूर्वक रोज बेगार में पकड़ लेता है, बलपूर्वक बिना वेतन के काम कराता है तो वो कहता है मेरा है। और अग्नि सुनो पिबा, और अंत में आग के हवाले ये शरीर जाएगा तो आग कहती है कि ये मेरा है, चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन ये मेरा है, मेरे मुख में इसको आना है। इसको तेल चोवा चंदन लगा करके लाखों रुपए का कपड़ा पहना करके चाहे तुम कुछ भी संवारो लेकिन अंत में मेरी लपटों में इसको आना है। अग्नि कहता है अग्नि सुनो पिवा, और यदि नहीं जलाया जाएगा तो कुत्ते प्रतीक्षा करते कहते हैं चाहे तुम कुछ भी संज्ञा इसको दे दो लेकिन दिस इज माई फूड, ये मेरा भोजन। तो ये सिद्धांत है इस संसार में कि जो वस्तु अंत में जिसके काम आती है वह उसी की मानी जाती है, ये सिद्धांत है, इसको कंज्यूमर कहते हैं। एक वस्तु कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा हो या दुकान में कोई भी रख रहा हो लेकिन जो उसको खरीद करके कंज्यूम करता है तो उसको माना जाएगा यही वास्तविक उसका अधिकारी है। तो लास्ट में शरीर किसके हक में जाएगा? कुछ दिन माँ कही कि मेरा शरीर है, कुछ दिन पति कहते हैं मेरा शरीर है, पत्नी कहती है मेरा शरीर है, लेकिन घूमते घामते ये शरीर अंत में आग के लपट में जाएगा या कुत्ता के पेट में जाएगा या धरती के अंदर जाएगा। तो शरीर तो उनका हुआ ना। मुझे एक बहुत सुंदर उदाहरण मिला। एक बार मैं लकड़ी खरीदने गया था, लकड़ी समझते ना वुड, घर बना मंदिर बन रहा था तो मैं लकड़ी खरीदने गया, हमारे साथ मेरा चचेरा भाई गया था। तो लकड़ी वाला दाम बताया तो दाम कुछ अधिक बता रहा था तो हमारा भाई कहा कि तुम इतना दाम क्यों बता रहे हो लकड़ी का? तो वो कहा कि महाराज आसाम से लकड़ी मंगाया हूं, आसाम से लकड़ी आई है इसलिए इसको लाने में बहुत भाड़ा लग गया है, किराया लग गया है। तो हमारा भाई कहता है किराया कुछ भी लगा हो हम किराया थोड़े देंगे। हम किराया नहीं देंगे, लकड़ी का दाम बताओ। तो दुकानदार कहा कि लकड़ी आप ले जा रहे हैं आप भोगेंगे और किराया मैं दूंगा। बताइए लकड़ी को आप ले जा रहे हैं तो इसको मंगाने में चीरने में बनाने में जो खर्च लगा वो आप देंगे ना, क्योंकि आप लकड़ी के मालिक हुए, मैं तो केवल सप्लायर हुआ। अब दुकान में वस्तु रखी गई है, कोई आदमी कहे कि हम पैकेज कर नहीं देंगे, हम सेल टैक्स नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, तो कौन देगा? तुम सब खरीद रहे हो भोगोगे और देगा तुम्हारे लिए दुकानदार? तो दुकानदार यही करने के लिए बैठा है कि सब चीज दिया करे फ्री में तुमको। तो अंत में जो व्यक्ति जिस वस्तु को भोगता है वही उसका अधिकारी माना जाता है। तो ये शरीर अंत में किसका है? ये माँ का नहीं है, ये भाई का नहीं है, ये पत्नी का नहीं है, यह है कुकुर का, कुत्ते का, या आग का, या जमीन का, और कोई अधिकारी नहीं है। बीच में 10 वर्ष के लिए मेरा 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 माई 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 करते रहिए लेकिन अंत में शरीर छीन लिया जाएगा और जिसका असली हक है उसको दे दिया जाएगा। स्वेच्छा से ले जाते हैं मरघट में, स्वेच्छा से आग में ले जाकर के जला देते हैं, कहते हैं हे अग्निदेव लीजिए, यू आर कंज्यूमर, और इसको कंज्यूम कीजिए, देना पड़ता है शरीर को। इतना ये बेयर सत्य है, नग्न सत्य है, लेकिन आश्चर्य है लोग इन बातों को समझते क्यों नहीं और इसे तुच्छ शरीर को पोषने के लिए पाप करते। क्या साधारण भोजन से काम नहीं चल जाएगा? ये खाओ वो खाओ ये खाओ, अमेरिका के स्टोरों में तो मैं देख करके दंग हो जाता हूँ कि इतना खाने का सामान और पीने का, इतनी शीशियां, इतना पैकेट, ओह। और जबकि बहुत सुविधा है घर पर भोजन बनाने के लिए, बहुत सुविधा है, गैस है, चूल्हा है, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्ण महाराज, जय जय। बहुत सुविधा के बावजूद भी आदमी बहुत गलत सलत वस्तुएं जहां तहां खरीद कर खाता रहता है। तो जो भी हो, यह शरीर नाशवान है। एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वान आत्मसात कृतवा हंति जंतु निर्वृते सतः। इस प्रकार से साधारण देह है। साधारण का अर्थ होता है सबका देह एक समान। इसको पोषने के लिए भगवान वस्तु बनाते हैं। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चर करता है तो फैक्ट्री ही बताती है कि इसमें आप डीजल डालेंगे कि पेट्रोल डालेंगे, वहीं से निश्चित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कार लाए और पानी डालकर चलाना चालू करते, वहीं से लिखा रहता है कि इसको कैसे चलाएंगे। तो ईश्वर ने शरीर बनाया है, बना करके वेद शास्त्र में सब डायरेक्शन दिया है कि इसमें क्या क्या डालना है, इसमें क्या क्या डालना है। डालने वाले पदार्थों में दूध है, घी है, फल है, फूल है और अन्न है। मांस मदिरे डालने के लिए कहीं नहीं लिखा गया है। जैसे कोई अपने घर पर कार लावे और उसमें पेट्रोल ना डाल करके किरासन तेल डाले या बालू डालने लगे या खर पात डाल करके चलाना चालू करे तो उसे तो भ्रष्ट होना है। इस शरीर में क्या डालना है पहले विचार कर लीजिए कि इसको मैन्युफैक्चर करने वाला क्या डायरेक्शन दिया है। भगवत गीता में या वेद शास्त्र में क्या कहा है खाने के लिए। भगवान ने हमारी सृष्टि करके ये नहीं कह दिया कि जो भी मन करे खाया करना है, मांस मदिरा जो भी मन करे वो खाया करना, ऐसा नहीं कहे। ये साधारण देह है सबका। और अव्यक्त प्रभवाप्ययम, यह अव्यक्त से आया है और अव्यक्त में चला जाएगा। अव्यय मैंने नाश, अव्यक्त से प्रभाव हुआ है और अव्यक्त में इसका अव्यय हो जाता है। शरीर नष्ट होने के बाद कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चलता है और कहाँ से ये मिला इसका भी पता नहीं चलता है। पहले व्यक्त नहीं रहता है, जन्म से पहले कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये शरीर क्या है, कौन आ रहा है, कौन जीवा रहा है, कितना दिन रहेगा, पहले कुछ पता नहीं रहता है। और मरने के बाद भी ये अव्यक्त हो जाता है। हवा हवा में, पानी पानी में, आकाश आकाश में, मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, इस तरह से मिले आग आग में। पंच महाभूत से शरीर बनता है और पंच महाभूत में विनष्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं अव्यक्त। भगवान ने गीता में कहा है अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना ने तत्र का परिदेवना। पहले शरीर नहीं था, अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त हो जाएगा, बीच में केवल व्यक्त है, तो इसमें क्या रोना धोना है। शरीर तो जाएगा, क्यों रो रहे हो। शरीर नशवान है, तो इस नशवान शरीर को पोषने के लिए पाप नहीं करना चाहिए। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो जानता है कि शरीर नश्वर है तो इस नश्वर शरीर को पोषने के लिए वो जीवों की हत्या कभी नहीं कर सकता है। असतः श्री मदानधस्य दारिद्र्यम परमंजनम आत्मोपमेन भूतानि दरिद्र परम इच्छते। तो जो श्रीमद से अंधा हो गया है उसकी आंखों में ज्योति डालने के लिए सबसे अच्छा अंजन क्या है, दरिद्रता। नारद जी चुन रहे हैं सबसे बेस्ट मेडिसिन। और श्रीमद से अंधा हुआ है तो धनहीनता से आंख खुल जाएगी, सारा धन उसका छीन लिया जाए, दरिद्र बना दिया जाएगा, तब विवेक हो जाएगा, तब वो देख सकता है कि गरीब लोग कैसे जीवित रहते, तब वो संभाल करके चलने लगेगा। तो कहते हैं असतः श्री मदानधस्य दारिद्र्यम परम अंजनम, जिसकी आदतें बिगड़ गई है संसार में धन के कारण, अंधा हो गया है, तो दरिद्रता उसके लिए अंजन है। तो दरिद्र होने पर तब अपने समान और दूसरों को देख सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी कितना कष्ट से जीवित होता है। किसी जीव को मारा जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है। जब आदमी गरीब होता है तब उसके समझ में बात आ जाती है। जब हमारे पैर में कांटा चुभता है तो फिर हम नहीं चाहते हैं कि हमको फिर कांटा चुभे। तो इसी तरह से हम उस व्यथा का अनुभव करके समझ जाते हैं कि दूसरे के शरीर में भी यदि कांटा चुभाया जाएगा तो उसको भी इतना ही दर्द होगा, वो समझ जाता है। और जिसके शरीर में कभी कांटा चुभा नहीं वो दूसरे के शरीर की व्यथा नहीं जान सकता है। जो कभी गरीबी का दुख नहीं देखा वो नहीं समझेगा गरीबों का दुख। श्रीमद से अंधा हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति निरस्तंभ होता है, घमंड नहीं होता है, सभी मदों से मुक्त रहता है। मद होगा ही नहीं, धन नहीं रहने पर मद नहीं हो सकता है, हिंसा भी उससे नहीं होती है। पैसा है ही नहीं तो कसाई खाना कैसे चलाएगा। जितना पाप है बड़ा बड़ा सब धनी आदमी करते हैं, वही उसके कंट्रैक्टर है पाप करने के, उनको शक्ति होती है। तो हिंसा भी उनकी चली जाती है और शरीर छीण हो जाता है दरिद्र का। अन्न की आकांक्षा रहती है, भोजन की आकांक्षा बनी रहती है, इंद्रियां सुख जाती हैं, इसलिए हिंसा भी चली जाती है। और दूसरा नारद जी कह रहे हैं कि दरिद्र व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि साधु महात्मा उसी के पास जाते हैं, गरीब आदमी के पास जाते हैं। ये नारद जी का उद्गार है। दरिद्र शैव युज्यन्ते साधव समदर्शिन। गरीब होने पर सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है कि साधु महात्माओं का संग होता है। आज उल्टा समय आ गया है, तथा कथित सो कॉल्ड साधु सब धनियों के द्वार पर घूमते रहते हैं। वो साधु है नहीं रियली, वास्तव साधु की यह एक प्रकार से परिभाषा दी गई है कि दरिद्रस्य एव युज्यन्ते साधव समदर्शिन। साधु गरीब के ही द्वार पर जाते हैं कि उनको जानते हैं कि ये हमारे बात सुनेंगे, भगवान की बात सुनेंगे। धनी लोग सुनते नहीं हैं, वो सुनते नहीं है, उनको फुर्सत नहीं होती है, दे हैव नो टाइम टू हियर। तो इसीलिए साधु लोग धनियों के दरवाजे पर नहीं जाते। और साधुओं के संग से क्या लाभ होता है कि संसार की जो उनकी वासना होती है वो भी चली जाती है। गरीब होने पर वासना तो रहती है कि हमको धन हो जाए, हो जाए, वो हो जाए, लेकिन जब साधु का संग होता है तो मान लेते हैं कि हम ठीक है, भगवान हमारे लिए उचित धन दिए हैं, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। उनकी तृष्णा चली जाती है साधु संग से, और उपवास आदि जो उनको करना पड़ता है यही उनके लिए बड़ा तप होता है। सबसे बड़ा लाभ गरीबों को यह होता है कि उन्हें महात्माओं का संग प्राप्त होता है। और यह सत्य है कि रियली जो महात्मा होते हैं वे गरीबों के यहाँ जाते हैं, धनियों के यहाँ तो जा भी नहीं सकते। फिर हम लोग तो हम पर्सनल ये नहीं कह रहे हैं कि हम महात्मा हैं, लेकिन हम एक उदाहरण दे रहे हैं। बंबई में जब बड़े बड़े धनी आदमी के पास जाना होता है तो महीनों से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, तो उधर से फोन आता है, नहीं हम दूसरे वीक में खाली है। कोई शिष्य बात करता है फोन पर तो वो बताते हैं कि नहीं हम इस महीने में खाली नहीं, इसमें खाली नहीं है, उसमें खाली नहीं है। और किसी गरीब से आप बात कीजिए कि हमारे गुरुजी आपके यहाँ आना चाहते हो, तो वो बेचारा सौभाग्य मानता है, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारा अहो भाग्य होगा हमारे यहाँ आ जाए। तो तत्काल रिस्पॉन्स मिलता है और अपने अपनी अपने पोजीशन के अनुसार वह बेटर स्वागत करता है। और धनी आदमी तो एक दो सर्वेंट लगा देगा कि ये साधु आए हैं, इनको खिला पिला दो, हमको फुर्सत नहीं, और लिफाफा में कवर में थोड़ा कुछ दे दिया, बस हो गए, चलो 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 ऐसे कहते, उनको फुर्सत नहीं है भागवत सुनने की। ये देखा जाता है क्योंकि धन के कारण इंद्रियों का प्रवाह विषय की ओर रखता था, तो जिसके इंद्रियों की धारा विषय की ओर है उसकी धारा भगवान में कैसे लग सकती है। धन इसमें कारण होता है, इसीलिए नारद जी कहते हैं कि सबसे बड़ी औषधि है दरिद्रता। और एक कवि ने तो यहां तक कहा गया है कि दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों में दरिद्रता जो है वो अच्छे जगह पर रहती है। विद्वत सब निवासिनी, ये विद्वानों के घर में रहती है दरिद्रता, गरीबी विद्वानों के घर में रहती है, और लक्ष्मी तो दुराचारियों के घर में रहती है। विद्वत सब निवासिनी, विद्वानों के घर में दरिद्रता रहती है और सब प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाली है, इसीलिए दरिद्रता ठीक है। आजकल के गृहस्थ इस बात को सुनेंगे तो भयभीत हो जाएंगे कि इस तरह की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें मुख्य आशय यह है कि आवश्यकता से अधिक धन हमको श्रृंखल बना देता है, इंद्रियों को भोगों में जोत देता है, प्रवाहित आवेश हो जाता है, तो उतना धन नहीं चाहिए। या धन हो भी तो उसे धर्म में लगाया जाए, भोगने में न लगाया जाए, नहीं तो इंद्रियों को वो विषयों की तरफ मोड़ देंगी। इसीलिए धनियों के लिए बताया गया, वास्तव में धनियों के पास जो धन है वो गरीबों का धन है, और जगह न रह करके वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसे करना क्या चाहिए कि उसे पुनः गरीबों को लौटाना चाहिए, ये कर्तव्य होता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार कहा करते थे इस बात को कि धनियों के पास जो धन है वो सबके पास का थोड़ा थोड़ा आकर इकट्ठा हो गया है, तो उसको दान द्वारा फिर बिखेर देना चाहिए, फिर गरीबों के पास पहुंचा देना चाहिए, भोजन के रूप में, कपड़ा के रूप में, दवा के रूप में, भगवत प्रसाद के रूप में फिर लौटा देना चाहिए, लौटाते रहना चाहिए। धन आएगा, अपने अपने कर्म से धन आता है, धन को आना ही है, लेकिन उसको लौटा देना चाहिए उचित काम में, धर्म में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि देखो ये देवता के पुत्र हैं, श्रीमद से अंधे हैं, लेकिन इन पर मैं कृपा करके इनको वृक्ष योनि में भेज रहा हूं। नारद जी ने कहा अब देवता भी नहीं रहेंगे, मनुष्य नहीं, वृक्ष योनि में, लेकिन मेरे अनुग्रह से और भगवान कृष्ण की दया से इनका जन्म ब्रज भूमि में होगा। यह वास्तव में साप नहीं था, कैलाश से हटा करके वृंदावन में जन्म दिया गया, वृक्ष का शरीर, वृंदावन में वृक्ष का शरीर भी देवलोक के शरीर से कई गुना ज्यादा महत्व रखता है। तो नारद जी कहते हैं कि मेरी कृपा से इनमें अस्थावर जोनी में जाने पर भी स्मृति बनी रहेगी कि हम लोग कौन थे, क्या थे, नारद जी ने ऐसे कहा है। यदि ये वस्त्रहीन है, नहीं समझ रहे हैं, लेकिन और वहां इन्हें भगवान कृष्ण का संग मिलेगा। तो नारद जी साप नहीं दे रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, और इस तरह से कहे और वे ये कहे कि भगवान का जब संग होगा तो कृष्ण प्रेम इन्हें मिलेगा, कृष्ण का प्रेम मिलेगा, इसके बाद फिर ये भगवत धाम में चले जाए। तो इस प्रकार नारद जी ने साप दिया, तो वे नल कुंवर और मणिग्रीव नंद और जसोदा के आंगन में वृक्ष हो गए। और भगवान जिस दिन बंधे थे, स्वयं तो बंधे थे, लेकिन इन वृक्षों को मुक्त करने की सोचे, घसीटते हुए गए, भगवान ने सोचा कि हमारे परम भक्त नारद जी ने जो वचन कहा है उसे सत्य करना चाहिए, अपने भक्त का उद्गार भगवान सत्य किए, और वृक्ष के निकट से गुजरे और वृक्ष गिर गए। बहुत जोर का शब्द हुआ, सब ब्रजवासी दौड़ करके आए, देख तो तत्काल ही एक घटना घटी, जो ही वृक्ष गिरे तो उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले, वही नलकुबर और मणिग्रीव, वो देवता थे, भगवान पृथ्वी पर उखल घसीट रहे थे और वे आकाश में खड़े थे, देवता वो पृथ्वी पर नहीं थे, और उखल में बंधे हुए बालक की स्तुति करने लगे, परिक्रमा करने लगे, मैं मुक्त हो गए। तो बहुत लंबी स्तुति किए हैं, यहाँ स्तुति के कहने का समय मेरे पास नहीं है, उसका एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। नलकुवर और मणिग्रीव कहते हैं कि नारद जी ने हम पर बहुत कृपा की, हे नाथ हमारी वाणी उस समय स्त्रियों का गुण गाने में लगी रहती थी, मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए थे, लेकिन अब आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी सारी इंद्रियां केवल आपकी सेवा में लगी रहे। तो उसमें कहते हैं वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, हमारी वाणी केवल आपके गुणानुकथन में लगी रहे, हम जहां भी जाए, किसी भी जोनी में जाए, लेकिन वाणी से आपका वर्णन करें, और श्रवण कथायाम हमारे दोनों कान आपकी कथा सुनने में लगे रहे, हस्तौच कर्मसु हमारे हाथ आपकी सेवा में रहे, मनस्तौ पादयोर न स्मृत्या हमारा मन आपके चरण कमलों का स्मरण करे, इसी बालक रूप का उखल में बंधे रूप का, और हमारा सिर आपको प्रणाम करने में लगा रहे, और हमारी आंखें भक्तों का दर्शन करने में लगी रहे, आपके भक्तों का दर्शन करें इस तरह से, और हमारा शरीर त्वग इंद्रिय आपके प्रेमियों का चरण स्पर्श करने में लगे। इस तरह से हमारे प्रत्येक अंग आपसे युक्त हो जाए। इस तरह जो दोनों स्तुति की और भगवान से कहे कि हमें आज्ञा दीजिए, हम जहां भी रहें आपके किंकर रहें, आपकी भक्ति में लगे रहें। तो भगवान ने कहा नलकुवर मणिग्रीव से कि मैं जानता था इस बात को पहले से ही, और वास्तव में नारद जी ने तुम दोनों पर कृपा की है। जाओ देखो, साधुओं का संग होने पर बंधन रहता ही नहीं है। नारद जी को तुम लोगों ने कुछ दिया नहीं, लेकिन उनका संग ही तुमको मुक्त कर दिया। भगवान अपने भक्तों के संग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। तो ये नहीं कहते हैं कि मेरे संग से तुम मुक्त हो गए, कहते हैं कि साधु का जब संग होता है तब यही फल प्राप्त होता है। जैसे सूरज का संग होते ही आंखें खुल जाती हैं, अंधकार चला जाता है, ऐसे साधु श्रेष्ठ वैष्णव का संग होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो जाओ, आज से मेरे प्रति तुम्हारी अनन्य भक्ति बनी रहेगी। इतना भगवान कहे तो वे लोग परिक्रमा किए भगवान की, और बच्चे देख रहे थे, और लोग अभी नहीं जुटे थे ब्रजवासी, बच्चे देख रहे थे कि दो सिद्ध, दो देवता इस छोटे से बालक की स्तुति किए और परिक्रमा कर रहे हैं, तो चले गए। इसके बाद सब लोग जुटे, चटाचट शब्द हुआ तो सब लोग जुटे, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे वृक्ष गिरे, बड़ा अपशकुन हो रहा है, कोई भूत गिरा दिया, क्या हुआ। तो बच्चों ने कहा कि ये जो कृष्ण बीच से गया, इसने उखल को खींचा तो ये वृक्ष गिर गए। तो दूसरे लोग नहीं माने, नहीं नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वे बालक के अप्रतिम प्रभाव को नहीं जानते थे। बच्चों ने ये भी कहा कि जब वृक्ष गिरे तो इससे दो देवता निकले, और दूसरे ब्रजवासी नहीं देखे, केवल बच्चों ने देखा था। और लोग कहे कि वो लोग प्रणाम किए, परिक्रमा किए, लेकिन कोई ब्रजवासी माना नहीं इसको, कहा फालतू बात करते हैं इस तरह से। बच्चों के प्रवचन पर कौन विश्वास करेगा, कुछ भी बोलेंगे बिना ज्ञान के, बिना बुद्धि के। और तो बच्चे तो देखे थे। फिर नंद बाबा आए, नंद बाबा आते ही हंसने लगे और बच्चे को खोल करके गोद में ले लिए। इस तरह भगवान ब्रजवासियों को लीला दिखा दिखा कर आनंदित करते थे। आज कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कथा का अंत नहीं होता है, विश्राम होता है। आप लोगों ने सुना होगा, विश्राम का मतलब होता है कथा विश्राम कर रही है फिर जगेगी। और संस्कृत में जो समाप्त अर्थ होता है उसका अर्थ खत्म होना नहीं होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक, और आप्त का अर्थ होता है प्राप्त। आज अच्छी तरह से प्राप्त हुई कथा, समाप्त का ही मतलब होता है। इसका अर्थ ही नहीं होता है खत्म हो गई, आज परफेक्टली प्राप्त हुई कथा, ये अर्थ है। तो इस तरह से आज कथा समाप्त हुई, ये कथा का विश्राम हुआ। तो मैं यहाँ पे श्रोता बंधुओं को अनेक सह धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा मान रखा, मुझे मान दिया, धैर्य से इतने देर तक बैठ करके आप सुने और भगवान श्री कृष्ण के निकटता का अनुभव किए, उनकी लीला के साथ रहे। लेकिन हम लोग तो एक मायाबद्ध जीव हैं, तुच्छ जीव हैं। भगवान की लीला वर्णन करने में भी कभी कभी जो अपना स्वभाव है, हृदय की गंदगी है, वो तो भाषा में आ ही जाती है। कभी कठोर शब्द निकल गया है, उसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। और श्रोताओं के साथ साथ हम उन बंधुओं को हृदय से आभारी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, जिनका धन इसमें लगा। आज का कोई भी काम होता है तो उसमें धन जरूर लगता है, क्योंकि कोई भी काम किसी जंगल में तो हो नहीं रहा है, न्यूयॉर्क सिटी में हो रहा है। यह प्रत्येक काम धन द्वारा साधित होता है। तो इस भागवत के प्रोग्राम में भी धन लगा, शरीर लगा, मन लगा, परिवार के सभी बच्चे लगे। वैसे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, सबको धन्यवाद है, और विशेष रूप से हम उनके आभारी हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, जिनका धन लगा इस कार्य को सफल बनाने में। यह भगवान की कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि उनको प्रेरित किया भगवान ने, उसमें है सुरेश भाई पटेल और उनका परिवार फैमिली, और डॉक्टर अनूप भाई पटेल और उनका परिवार, और मनीष भाई दवे और उनका परिवार, डॉक्टर सिंघल और उनका परिवार, श्री राजेंद्र प्रसाद और उनका परिवार, कांतिलाल के पटेल और उनका परिवार। इस तरह से इन 6 बंधुओं ने स्पॉन्सर किया, उनका धन खर्च हुआ है। वास्तव में धन की यही सार्थकता है, सैकड़ों लोगों को भगवान के निकट पहुंचाने में आपका धन कारण बना है। भगवान कृष्ण का वर्णन सुने, 7 दिन तक मन भगवान में रहा, तो हम भगवान से आपके लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं कि आप सदा सुखी रहें और इसी तरह धर्म में आपकी मति लगी रहे, भगवान में मन लगा रहे, सब सुखी रहें। और इसके बाद मैं नारायण भाई पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना अप्रिसिएशन पत्र यहाँ आकर के पढ़ें, जिन्होंने मुझे लिख करके दिया है, तो अपना पत्र पढ़ करके सुना।